अब आपके सामने प्रस्तुत है निर्देशक जब्बार पटेल का वक्तव्य। इस नाटक में घासीराम और नाना फडणवीस का व्यक्ति संघर्ष प्रमुख होते हुए भी तेंदुलकर ने संघर्ष के साथ साथ अपने विशिष्ट शैली में तात्कालीन सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति का मार्मिक चित्रण किया है। परिणामतः सत्ताधारी वर्ग और जनसाधारण की संपूर्ण स्थिति पर काल अवस्थापन के अंतर में विशेष वास्तविक अंतर नहीं पड़ता। घासीराम हर काल और समाज में होते हैं और हर उस काल और उस समाज में उसे वैसा बनाने वाले और बनाकर मौका तक उसकी हत्या करने वाले नाना फडणवीस भी होते ही हैं। वह बात तेंदुलकर ने अपने ढंग से प्रतिपादित की है। नाना ने घासीराम का उपयोग बड़ी धूर्तता से किया है, पर जब उनका रचा राक्षस पलटकर उन्हीं को चुनौती देने लगता है तो नाना ही उसे नष्ट भी कर देता है। इस दृष्टि से यह नाटक नाना फडणवीस का ही है, इसमें शक नहीं। घासीराम एक प्रकार से एक प्रसंग मात्र है जिसे तेंदुलकर ने अपने वक्तव्य की अभिव्यक्ति का एक निमित्त एक साधन बनाया है। घासीराम कोतवाल नाटक में नाना फडणवीस और तत्कालीन पत्नोन्मुख समाज के चित्रण द्वारा कुछ राजनीतिक और विशेष सामाजिक स्थितियों के विषय में तेंदुलकर को कुछ सत्य उजागर करने में जो सनातन हो गए हैं। इतिहास के नाना फडणवीस बौद्धिक प्रखरता से तड़पती हुई शक्ति के रूप में प्रतिष्ठित हैं, किंतु इस नाटक में केवल घासीराम कोतवाल के प्रसंग की सीमा में घिरे होने के कारण उनका व्यक्तित्व इकहरा दिखाई पड़ता है, उसके दूसरे आयाम सामने नहीं आ पाते। अप्रत्यक्ष रूप से तेंदुलकर ने इसका भी उसी तरह उपयोग किया है जैसे लोक नाटकों में होता है, जहाँ चरित्र आमतौर पर एक या दो आयाम वाले ही होते हैं। इसलिए एक प्रसिद्ध मराठी समीक्षक ने इस नाटक को बहुत कुछ पारंपरिक भारतीय नाट्य रूप उपरूपक जैसा बताया है। मैंने अपनी प्रस्तुति में इस बात को केंद्रीय सूत्र के रूप में माना है। नाटक देखते समय दर्शकों के मन में अनजाने ही यह बात उतरती जानी चाहिए कि सारे का सारा समाज ही ढह चुका है, चुक रहा है। यह बात अप्रत्यक्ष नहीं होनी चाहिए। इस नाटक की रचना मराठी रंगमंच के लिए एकदम नई होने के कारण उसके अभिप्रेत अर्थ को मनचाही अप्रत्यक्ष पद्धति से व्यक्त करने में मुझे बड़ी सुविधा हुई। किसी प्रतिष्ठित नाटककार ने लोक नाट्य के स्वरूप में कोई नाटक पहले ढाला नहीं था, इसलिए मैं लोक नाटक के लचीले लोचपूर्ण स्थल तंत्र का उपयोग कई तरह से खुलकर कर सका। आदमियों के झूलते पर्दे की कल्पना रंगमंच के लिए अद्भुत है। इस नाटक की सबसे बड़ी युक्ति भी यही है। 12 ब्राह्मण कोरस के रूप में कथा प्रवाह संभालते हैं, आवश्यकता अनुसार तात्कालिक इकहरी भूमिकाएं भी निभाते हैं। यह पर्दा दो खंडों में बढ़ता है और क्षण भर में समाज के कई कई घटकों इकाइयों के प्रतिरूप में ढल जाता है। घासीराम को कोतवाल के रूप में स्थापित करने वाला यही पर्दा घासीराम के वध के समय रुष्ट ब्राह्मणों के रूप में रंगमंच पर दिखता है। श्री गजराज नर्तन करें गाने वाला यही पर्दा गणपति वंदना द्वारा लोक नाट्य से अपना संबंध जोड़ता है। कलाकार और भूमिका के बीच एक सूक्ष्म और तरल संबंध लोक नाट्य की विशिष्टता है। मैंने अपने प्रदर्शन को किसी विशेष लोक शैली में नहीं बांधा, वरन दशावतार, भाड़ुड़, खेला, तमाशा, पोवाड़ा, वाद्या मुरली, कीर्तन आदि शुद्ध मराठी लोक कलाओं का मिश्रित उपयोग किया है। सरस्वती, लक्ष्मी, गणपति द्वारा दशावतारी आरंभ होता है। इस समय की आरती के थाल को ही बाद में कीर्तन के समय काले टीके के लिए उपयोग कर इन विभिन्न शैलियों में साम्य दिखाने का मैंने प्रयत्न किया है। ब्राह्मण वेशधारी कलाकार प्रेक्षागृह से होकर रंगमंच पर आते हैं। इस प्रकार आत्मीयता उत्पन्न होने के कारण प्रदर्शन का लोक नाट्य रूप दर्शकों के मानसिक स्तर तक अधिकाधिक संप्रेषित हो जाता है। नाटक के पहले अंक की गति दूसरे अंक की अपेक्षा धीमी है। लोक नाट्य के बाह्य स्वरूप में ऐतिहासिक व्यक्ति को स्थापित होने में समय लगना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह सर्वथा नया अनुभव है। नाना फडणवीस सरीखे इतिहास पुरुष का रंगमंच पर नृत्य तालबद्ध होकर आना मराठी दर्शक के लिए निश्चय ही धक्का पहुंचाने वाला अनुभव था। इसलिए दर्शक को इस बात का विश्वास दिलाना था कि इस नाटक का पात्र नाना फडणवीस एक लोक नाटकीय चरित्र मात्र है, ऐतिहासिक नाटकों का प्रामाणिक संपूर्ण व्यक्तित्व नहीं। कुछ समीक्षकों की दृष्टि में यह बात बहुत धीमे धीमे स्थापित हुई, किंतु मुझे लगा कि खोखले समाज को निर्देशित कर उसमें नाना के स्थान और कोतवाली हासिल करने के लिए घासीराम द्वारा नाना के उपयोग की प्रक्रिया आदि का दिग्दर्शन विस्तार पूर्वक होना ही चाहिए था। दूसरे अंक की गति तेज थी। पूना के ब्राह्मणों पर अत्याचार करने वाला घासीराम, उसका प्रतिशोध, उस प्रतिशोध के कारण घासीराम का राक्षस में रूपांतरित होना आदि अग्नि परीक्षा के दृश्य तक जाकर स्थापित होता है। नाना के विवाह से लेकर गौरी की मृत्यु तक घासीराम बहुत बेचैन है, लेकिन उसकी बेचैनी नराधम की है। वह ब्राह्मणों की कोठरी में घोंट कर मारना नहीं चाहता था, लेकिन नराधम घासीराम की हत्या उसके अप्रत्यक्ष अपराध का ही फल है। नियति के इस विरोधाभास को तेंदुलकर ने प्रभावशाली ढंग से निरूपित किया है। नियति का ऐसा प्रतिशोध उन अनेक ऐतिहासिक खलनायकों के प्रसंग में मिलता है। घासीराम की हत्या के बाद नाना का चतुराई भरा भाषण धूर्तता और कूटनीति से पूर्ण होने के कारण उनके प्रभुत्व का विलक्षण प्रभाव उत्पन्न करता है और नाना फडणवीस पुनः नाटक के केंद्र में आ जाते हैं। इस नाटक का अंग्रेज पात्र एक दर्शक मात्र है। नाटक के अंत में वह पिछली चौकी पर बाईं ओर प्रकाश वृत्त में खड़ा है। नीचे घासीराम की हत्या के बाद सामूहिक उत्सव हो रहा है। यह पूना के भावी इतिहास का महत्वपूर्ण पूर्वाभास है। यही अंग्रेज घासीराम के कोतवाली प्राप्त करने के समारोह के समय भी एक कोने में खड़ा होकर उसका साक्षी बनता है। मैंने पहली बार जब यह नाटक पढ़ा तो लगा यह नाटक संवाद प्रधान नहीं अपेक्षाकृत दृश्य प्रधान है। मुझे ऐसे ही दृश्य बिंबों द्वारा प्रभाव उत्पन्न करने वाले नाटक की तलाश थी। दूसरी बात, बहुत दिनों से मेरे मन में यह थी कि फिल्मों में दूरवर्ती जिसे लॉन्ग शॉट कहते हैं, मध्यवर्ती मिड शॉट और समीपवर्ती क्लोजअप चित्रों की तीन चार दूरियों और उनके समिश्रण के शिल्प और चातुर्य से जो विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जाता है वह रंगमंच पर भी क्यों ना हो। यह नाटक संवाद, नृत्य, संगीत, गति, पात्र, दृश्य आदि अनेक खंडों के योग से ही अग्रसर होता है। इन सबको जोड़ने वाला सूत्र भी जबरदस्त है। इन सब तथ्यों के साथ यह नाटक पूर्ण लगता है। अतएव काल्पनिक कैमरा हाथ में लेकर ही मैंने इसे साकार करने का प्रयत्न किया। प्रकाश से उजना द्वारा रंगमंच को विभाजित कर दूर और पास के अनेक वांछित प्रभाव रंगमंच पर उत्पन्न किए। गति और समूहन आदि को मैंने कागजी तैयारी में ही निर्धारित कर लिया था। मेरी पद्धति में नाटक की प्रदर्शन कृति के हर पृष्ठ पर प्रसंग के रेखा चित्र पहले से तैयार रहते हैं। इस नाटक के 60-65 पात्रों की गतियाँ स्वतः स्फूर्त न हो वरन पूर्व नियोजित रहे, इसके लिए मैं पूरी तरह तैयार था। इन पात्रों की गति शैली कठपुतलियों की तरह अपेक्षित थी। चरित्र की दृष्टि से मैंने जो घासीराम चुना वह कद में छोटा था। आसपास के प्रचंड व्यक्तित्व में वह बौना ही लगना भी चाहिए था। नृत्य गतियां सरल और सहज किंतु लयबद्ध थी। शास्त्रीय नृत्य का प्रयोग इस लोक नाट्य में जटिल और अति परिष्कृत लगा। नृत्य गतियों में लोक नाट्य की अनगढ़ ऊर्जा का होना आवश्यक था। घासीराम की नृत्य में मृत्यु मात्र को ही स्वतः स्फूर्त ढंग से प्रस्तुत किया गया। ढोल और नगारे की प्रबल ताल को चंदवारकर जी, जो कि इस नाटक के संगीत निर्देशक हैं, उन्होंने आगे जाकर विशेष ढंग से बढ़ाया, जिससे दृश्य की भीषणता बढ़ी। नाना जी की नृत्य गतियों में संयम और प्रभुता का पुट बरकरार था। मूलगंध जी, जो नृत्य निर्देशक हैं, उन्होंने लावणी को बैठकी लावणी के पदन्यास में ढाला था, जो पूरे मराठी रंग वाली थी। भास्कर चंदवारकर जी ने संगीत के लिए सिर्फ चमड़े के साज ही लिए और वे भी प्रदर्शन के साथ साथ बजवाकर, पहले से रिकॉर्ड करके नहीं। उसमें अपवाद मात्र सुंदरी वाद्य ही था। नाना गौरी के बाग के दृश्य में और नाना के विवाह के समय सुंदरी अलग अलग ढंग से बजाई गई थी। चंदवारकर जी ऑर्गन नहीं चाहते थे, क्योंकि उससे प्रचलित संगीत नाटकों का सा असर लोक संगीत में आ जाता। नमन, लावणी, पुवारा, वाद्या मुरली, भाड़ूड़ आदि अपने प्रकृत अनगढ़ ओज के साथ ही गाए गए। गुनगुनाने का उपयोग मराठी रंगमंच पर पहली बार चंदवारकर जी ने ही किया। मनुष्य के हिलते पर्दे की गुनगुनाहट द्वारा भिन्न भिन्न भावावेग व्यक्त किए गए। घासीराम की हत्या के बाद उत्सव होता है और फिर मनुष्यों का पर्दा सामने आता है। कथा समाप्त हो चुकी है, इसलिए नाना की भूमिका करने वाला अभिनेता भी इस पर्दे में सम्मिलित हो जाता है। घासीराम बड़ा पड़ा है, पर उस अभिनेता के उठने से रस भंग ना हो, इसलिए उसे अपवाद रूप यथास्थान ही रहने दिया जाता है। तभी सूत्रधार आगे बढ़कर श्री गजराज नर्तन करें ध्रुपद को भैरवी के करुण स्वर में गाकर उस कलाकार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। एक प्रकार से लोक नाटक का पूर्ण शिल्प यहाँ दिखता है और नाना जैसे सत्ताधारी व्यक्ति का पंक्ति में आना भी विशेष अर्थ का द्योतक हो जाता है। क्योंकि जैसा पहले बताया गया, अंग्रेज पीछे खड़ा यह सब देख रहा है, मगर लोकनाट्य शिल्प से भी अधिक नाटक का यह रूप अधिक गहरे सोचने को विवश करता है। घासीराम दर्शकों से सीधे बात करता है प्रभाव को गहन करने के लिए, जो कि ब्रेक्ट के विपरीत है, क्योंकि यहाँ घासीराम कथा सूत्र में बाधा नहीं डालता, न ही वह प्रभाव को मिटाने का यत्न करता है। यही रूढ़ लोकनाट्य से भिन्न शिल्प का प्रयोग तेंदुलकर ने किया है। वेशभूषा में ऐतिहासिक प्रामाणिकता का आग्रह नहीं बरता गया, इससे भी लोक शैली का प्रभाव जमा रहा। रंगों का चुनाव अवश्य सावधानी से किया गया, जिससे समूहन आदि में रंग मिश्रण की संभावना रहे। अभ्यास 3-3.5 महीने तक हर दिन किया गया। नृत्य, गीत, संवाद सभी का तालमेल साथ साथ ही चला। मंडली का कोई भी कलाकार व्यावसायिक नर्तक या गायक नहीं था, सभी शौक से आते थे, शौकिया थे। यही नहीं, 60 में से 25 तो ऐसे थे जिन्होंने मंच पर इससे पहले कभी पांव भी न रखा था, किंतु इनका श्रम, लगन और आत्मविश्वास प्रबल था। लगनशील कलाकार, नृत्य निर्देशक, संगीत निर्देशक और निर्देशक के सहयोगी प्रयास कर्म से ही यह अलग ढंग की प्रस्तुति संभव हो सकी।